आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अमन है और इस ऑडियो में हम क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बैक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप सब अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक निकालिए एंड ओपन कर लीजिए पेज नंबर 141। सो ऑन पेज नंबर 141, हेयर इज योर बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 12। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट ऑडियो में होमवर्क दिया था कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है, चैप्टर की रीडिंग करनी है और उसी के साथ जिन पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन और मार्क करवाया था आपने उन्हें अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। बिकॉज ये जितने भी पॉइंट्स मैंने मार्क करवाए हैं इन्हीं के बेस्ड पे आपकी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज होती है। तो बच्चों, अगर आपने ये पढ़ लिया है तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड डैश। जैसा कि इसमें पूछा गया है कि जब हम किसी न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं या फिर न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं किसी भी पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को इस्तेमाल करके। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब प्लांट का वो पार्ट या फिर वो हिस्सा जो कि ग्रो करता है और उसी को हम वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी भी पेरेंट के वेजिटेटिव पार्ट की हेल्प लेकर एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि ऐसे प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो देयरफॉर आप इस आंसर में आपकी मर्जी है, आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी लिख सकते हैं या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी लिख सकते हैं, बोथ आर द राइट आंसर्स। तो चलिए आप इस आंसर को लिख लीजिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकंड, बी पार्ट, अ फ्लावर मे हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड डैश। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी एक पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर दोनों ही तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं। हमने इस चैप्टर में दो तरह के फ्लावर्स पढ़े थे, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन द बेस्ड ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, आइदर मेल आइदर फीमेल और बोथ। तो यहाँ पर अगर किसी फ्लावर में या तो मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा तो ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। देयरफॉर आपका आंसर आ जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो योर स्टेटमेंट विल बी, अ फ्लावर मे हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। नाउ नेक्स्ट पार्ट सी, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज डैश। यहाँ पर लिखा है कि जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, या तो वो स्टिग्मा सेम फ्लावर का हो या फिर किसी दूसरे फ्लावर का हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। सो इसका आंसर आएगा पॉलिनेशन, एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज पॉलिनेशन। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट, द फ्यूजन ऑफ मेल and female gametes is termed as dash. हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो वो एज ए रिजल्ट जाइगोट की फॉर्मेशन करती है, यानी जाइगोट बनाते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा फर्टिलाइजेशन, बिकॉज फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं एंड एज ए रिजल्ट जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। सो योर स्टेटमेंट विल बी द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट ई पार्ट, सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ डैश एंड डैश। बच्चों हमने इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज सीड डिस्पर्सल, जिसका मतलब होता है कि जो सीड्स हैं वो एक जगह से या तो दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं या फिर वो किसी अनदर एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वो ब्लोन ऑफ हो जाती हैं और किसी दूसरी जगह पर जाके एक न्यू हैबिटेट में लिव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देयरफॉर जो सीड डिस्पर्सल है वो एक्सटर्नल एजेंट्स की वजह से पॉसिबल है। तो आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा विंड एंड वाटर, एंड योर स्टेटमेंट विल बी सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय means of wind and water. So this was your question number 1. Now next, question number 2. Describe the different methods of asexual reproduction. Give examples. तो बच्चों आपने इस question के अंदर अलग अलग asexual reproduction के methods को describe करना है। आप सिंपल उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं और उसके साथ उनके एग्जांपल्स कि कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पर्टिकुलर मेथड्स अकर होते हैं। जैसे कि हमने इस चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत अलग अलग मेथड्स पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग। तो ये सभी एग्जाम्पल्स और ये सभी मेथड्स आप इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं। नाउ इस क्वेश्चन के लिए आप अपनी बुक के अंदर रेफर कर सकते हैं पेज नंबर 133। सो ऑन पेज नंबर 133 हेयर इज द टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसके नीचे अलग अलग मेथड्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके बाद बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सभी टॉपिक्स जो दे रखे हैं आप इनके अंदर से एक तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के साथ आप इनके एग्जांपल्स लिखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पर्टिकुलर मेथड अकर होता है। मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ए पार्ट बाइनरी फिजन, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, पेरेंट सेल इलोंगेट and gets divided into two identical daughter cells. Each daughter cell grows into an independent adult. जैसे कि binary fission की definition है, same as that आपने बाकी methods की भी यहाँ पर definitions लिखनी है। For example, B part, fragmentation. तो fragmentation में आप definition लिखेंगे, in this process body of the organism breaks up into two parts, then each part grows into a new filament, thus forming two organisms from a single one. तो ये आपकी fragmentation की definition हो गई, जिसमें आप example लिख सकते हैं algae, then after that budding, vegetative propagation. तो इस तरीके से आप अलग अलग methods वहां पर mention करेंगे, उसके साथ उसकी डेफिनेशन एंड द एग्जांपल्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इन विच द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकरिंग। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये एक्सप्लेन करना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और आपको इससे क्या समझ में आता है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा कि ये एक ऐसे टाइप की रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, मेल एंड फीमेल। इट इज फाउंड मेनली इन हायर प्लांट्स वेयर मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। बेसिकली ये रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स में होती है जहां पर मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होकर जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। दीज जाइगोट्स डेवलप इनटू इंडिविजुअल्स विच आर नॉट आइडेंटिकल। उसके बाद ये जाइगोट डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल में इवॉल्व होते हैं। ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं ये दोनों पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करते हैं, यानी दोनों पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स या फिर जो फीचर्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट्स सर्वाइव आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स पहले तो आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर आपको दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन दे रखी है इस चैप्टर में, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेकंड इज सेक्सुअल। हमने दोनों को डीपली पढ़ा, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा, बट जो मेन है वो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले मैं पॉइंट्स आपको बताता हूं। इसमें आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, ओनली वन पेरेंट प्लांट इज इन्वॉल्व्ड। कि इस टाइप की रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक पेरेंट प्लांट इन्वॉल्व होता है। सेकंड पॉइंट, इट अकर्स इन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। ये बेसिकली यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर होता है, या तो वो मेल प्लांट हो या फिर वो फीमेल प्लांट हो। थर्ड, इट अकर्स इन लोअर प्लांट्स। ये छोटे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जैसा कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के देखे, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन। तो बेसिकली ये लोअर प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अकर करता है। नेक्स्ट, इन मोस्ट ऑफ द मेथड्स द ओरिजिनल पेरेंट डिसअपीयर। ज्यादातर मेथड्स के अंदर जो ओरिजिनल पेरेंट है वो डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस लाइक गैमीट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन इज नॉट सीन। ऐसे टाइप के फर्टिलाइजेशन में, एक्चुअली अगर आप इस प्रोसेस की बात करें तो ऐसे प्रोसेस में ना तो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है और ना ही गैमेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट, नो नीड ऑफ सीड्स। ये तो हमने चैप्टर में पढ़ा ही था दैट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सीड्स आर नॉट यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर न्यू ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन में सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस तरीके से आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स लिख सकते हैं। सेम एज दैट आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स भी लिख सकते हैं जो कि उसके ठीक ऑपोजिट हैं। जैसे कि पहले इसकी डेफिनेशन, बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसके अंदर दोनों टाइप के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल आल्सो एंड फीमेल। इस प्रोसेस के अंदर बायसेक्सुअल प्लांट्स हिस्सा लेते हैं, उसी के साथ इट अकर्स इन हायर प्लांट्स। नेक्स्ट, सीड्स आर यूज्ड टू गेट न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ फ्लावर। इस टाइप की प्रोसेस के अंदर सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो बच्चों आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 5 में फ्लावर के जो अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं आपने उनका एक डायग्राम बनाना है। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको एक डायग्राम मार्क करवाया था, दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आप रेफर कर सकते हैं पेज नंबर 137। तो प्लीज आप पेज नंबर 137 ओपन करिए। इस पेज पर फिगर नंबर 12.9 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो आप इस क्वेश्चन में ये डायग्राम बना सकते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो बच्चों जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला है, आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस बताना है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हैं दैट द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, आफ्टर दैट देयर एग्जांपल्स। पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इन सेल्फ पॉलिनेशन, फर्स्ट पॉइंट, पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, अकर्स इन बायसेक्सुअल प्लांट्स having anther and stigma maturing at same time. Examples are wheat, peas, etc. और cross pollination में आप लिख सकते हैं that pollen grains are carried to stigma of another flower, occurs in bisexual flowers having anther and stigma maturing at different times. And examples are ladyfinger, tomato, brinjal, एटसेट्रा। तो इस तरीके से आप क्रॉस पॉलिनेशन एज वेल एज सेल्फ पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर्स। बच्चों आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि फ्लावर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे अकर होता है। ये हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था अंडर द टॉपिक फर्टिलाइजेशन। आप इस क्वेश्चन के लिए रेफर कर सकते हैं इन योर बुक द टॉपिक फर्टिलाइजेशन विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 138। तो इस टॉपिक में भी आप फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे डैट when the pollen grain reaches the stigma of a same species flower, it starts growing out into the pollen tube of the stigma. This tube continues to grow inside the style till it reaches the ovule. Male cells are released into the ovule for the fertilization with the female egg cell, and thus the zygote is formed. After this process of fertilization, the ovary develops into fruit and ovule into seeds. और ये सारी चीजें आपके पेज नंबर 138 पर मेंशन है अंडर द टॉपिक फर्टिलाइजेशन। उसको रेफर करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बेसिकली आपने इसके अंदर फर्टिलाइजेशन के पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है इंक्लूडिंग इट्स डेफिनेशन। So this was your question number 7. Now next, question number 8. Describe the various ways by which seeds are dispersed. आपने इस question के अंदर अलग-अलग methods और अलग-अलग ways बताने हैं जिसके through जो हमारे seeds है वो disperse हो जाते हैं. That is, they travel a long distance by means of various external agents, जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े थे। मैंने आपको सीड डिस्पर्सल के अलग अलग मेथड्स बताए थे। तो आप इस क्वेश्चन के लिए रेफर कर सकती हैं पेज नंबर 138 एंड 139 जिसपे सीड डिस्पर्सल का टॉपिक दे रखा है। तो इसको रेफर करके आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉलोइंग आर द वेज इन विच द सीड्स आर डिस्पर्स्ड। फर्स्ट, सम लाइट सीड्स लाइक दैट ऑफ मदार विच आर हेयरी, ड्राई एंड स्मॉल आर कैरीड अवे बाय द विंड, टू डिफरेंट प्लेसेस. सेकेंड, स्पाइनी सीड्स एंड फ्रूट्स लाइक दैट ऑफ जेंथियम एंड यूरेना स्टिक टू द क्लोथ ऑफ पासर्स बाय एंड एनिमल्स. These seeds are carried away by these agents to different places. Third, in some plants having heavy seeds, like that of coconut, water act as the dispersing agents. Fourth, some seeds are dispersed with the fruit burst, like in case of balsam and castor. तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकती हैं. So, this was your question number 8. Now, next, question number 9. Match items in column first with those in column second. Column first, A part, bud, B, eyes, C part, fragmentation, D part, wings, and E part, spores. और वैसे ही कॉलम सेकंड के अंदर दे रखा है, फर्स्ट मैपल, सेकंड स्पायरोगायरा, थर्ड यीस्ट, फोर्थ ब्रेड मोल्ड, फिफ्थ पोटैटो एंड सिक्स्थ रोज. आपने क्या करना है, आपने कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के अंदर जो आंसर्स दे रखे हैं उनके साथ मैच करना है. बेसिकली इस क्वेश्चन में हम उसके कॉरेस्पोंडेंस देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉलम फर्स्ट में यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है बड, तो कॉलम सेकंड के अंदर बड की कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर बड वर्ड के सिमिलर जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है हमने उसके साथ बड को मैच कर देना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं. तो सबसे पहले है बड. हमने इस चैप्टर में पढ़ा था डैट अ प्रोसेस नेम्ड एज बडिंग विच इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन which occurs in unicellular organisms, for example, yeast. Yeast organism के अंदर छोटे छोटे buds बन जाते हैं. ये buds further आगे divide होकर और new buds को generate करते हैं और ये जितने भी buds हैं ये जब grow करेंगे and develop करेंगे एक new individual में develop हो जाते हैं. तो basically जो bud है वो budding से related है and जो yeast organism है वो बडिंग का एक एग्जाम्पल है. देयरफोर इन कॉलम फर्स्ट ए पार्ट बड, हम इसको मैच करेंगे कॉलम सेकंड के थर्ड पार्ट से, दैट इज ईस्ट. नाउ नेक्स्ट बी पार्ट इज आइस. अब हमने चैप्टर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा था जिसके अंदर हम किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं एंड उसको ग्रो करते हैं. तो यहां पर भी जो आइस है वो हमने पोटैटो से रिलेटेड इसके बारे में पढ़ा था डैट ऑन द पोटैटो द सरफेस ऑफ द पोटैटो बियर्स सम स्मॉल बर्ड्स विच इज नोन एज आई ऑफ द पोटैटो. और ये जो आइस होती है अगर हम इनको सॉइल में बरी कर दें और इनको डेली बेसिस पे वाटर करें तो उसकी वजह से लीव्स ग्रो करेगी और धीरे धीरे नीचे की तरफ रूट्स ग्रो करेगी. तो बेसिकली आइस आर रिलेटेड टू पोटैटो. तो हम आइस को मैच करेंगे फिफ्थ पार्ट ऑफ कॉलम सेकंड, दैट इज पोटैटो. नाउ नेक्स्ट सी पार्ट फ्रेगमेंटेशन. बच्चों हमने इस चैप्टर में एक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड पढ़ा था या फिर आप प्रोसेस भी कह सकते हैं जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन. इस प्रोसेस के अंदर जो भी पेरेंट सेल है या जो ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है. जब वो छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा देन ईच फ्रेगमेंट और ईच पीस विल बी ग्रो एंड प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग और अ न्यू इंडिविजुअल सेल. तो बेसिकली जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है ये स्पायरोगायरा से रिलेटेड है एज Spirogyra is that individual organism which reproduce by the mode of asexual reproduction. Therefore, fragmentation ka answer aa jayega second part of column second, that is Spirogyra. Next, D part, wings. Wings ka answer hai maple, that is first part of column second, नेक्स्ट ई पार्ट। ई पार्ट में है स्पोर्स। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट स्पोर फॉर्मेशन, जिसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। ये स्पोर्स जब पेरेंट सेल से बाहर निकलते हैं और विंड करंट्स के थ्रू जब ये किसी जगह पर जाकर फॉल कर जाते हैं ऑन मॉइस्ट सॉइल और मॉइस्ट सरफेस, एंड देन अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे रिप्रोड्यूस ग्रो एंड डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम ब्रेड मोल्ड में देख सकते हैं। तो बेसिकली स्पोर्स का आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट ऑफ कॉलम सेकेंड, दैट इज ब्रेड मोल्ड। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 9। मैं दोबारा से आंसर्स को रिपीट कर देता हूं। बड, यीस्ट, आइस, पोटैटो, फ्रेगमेंटेशन, स्पायरोगायरा, विंग्स, मैपल, स्पोर्स, ब्रेड मोल्ड। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। टिक द करेक्ट आंसर। आपको इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट ऑप्शन चूज करके उसे टिक मार्क करना है। ए पार्ट, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द, योर ऑप्शंस आर लीफ, स्टेम, रूट और फ्लावर। प्लांट के अंदर मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? लीफ होता है, स्टेम, रूट या फिर फ्लावर। हमने चैप्टर में पढ़ा था दैट द फ्लावर इज द ओनली रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसका मतलब है कि प्लांट के अंदर सिर्फ फ्लावर एक ऐसा पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। देयरफोर द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फ्लावर। नेक्स्ट बी पार्ट, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, योर ऑप्शंस आर फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड सीड फॉर्मेशन। बच्चों इस चैप्टर में मैंने आपको एक पॉइंट अंडरलाइन करवाया था जो कि फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन थी, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। Therefore, your answer will be fertilization, that is option first. Next, C part. Mature ovary forms the, your options are seed, stamen, pistil and fruit. यहाँ पे पूछा गया है कि जो mature ovary है वो क्या बनाता है? वो seed में convert होता है, stamen या फिर pistil में और fruit में। In this chapter, we have studied that the mature ovary will we grow and form the fruit. Therefore, iska answer aa jayega fourth option, that is fruit. Next, D part. A spore producing plant is, your options are rose, bread mold, potato or ginger. Ek spore producing plant का एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया है। हमने इस चैप्टर में स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के काफी सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे, जिसमें से बेसिकली ब्रेड मोल्ड इज द मेजर वन, क्योंकि हमने एक एक्टिविटी भी देखी थी, दैट इज एक्टिविटी 1.2 इन द चैप्टर फर्स्ट, जहां पर ब्रेड सरफेस के ऊपर जब ब्रेड खराब हो जाती है तो उसके ऊपर मोल्ड आ जाते हैं, थ्रेड लाइक मेशी स्ट्रक्चर्स फॉर्म होना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज ब्रेड मोल्ड। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। Next, E part. Bryophyllum can be reproduced by its stem, leaf, roots or flower. यहाँ पर bryophyllum जो plant है उसके reproduction का part पूछा गया है कि कौन से part के through ये reproduce करता है, that is what is the vegetative part of the bryophyllum. तो हमने पढ़ा था that in bryophyllum leaf, जो लीफ के मार्जिन होते हैं वहां पर एक न्यू बड अराइज होती है। जब वो बड नीचे फॉल कर जाती है मॉइस्ट सॉइल पे, तो वहां पर वो धीरे धीरे न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। देयरफोर योर आंसर इज लीफ, That is option second. So this was your question number 10. इसी के साथ आपकी chapter number 12 की back exercise भी खत्म होती है. आपका homework है, आपने इस exercise को अच्छे से practice करना है, revise करना है and learn करना है. बच्चों, इस audio के लिए इतना ही. बाकी हम next audio में करेंगे. Thank you.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.